भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रार्दरानापरः। हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करते हैं ये थर्सडे के अपने प्रोग्राम में। तो बहुत दिनों के बाद में ये ऐसा अवसर है कि हमारे पास गेस्ट स्पीकर नहीं है आज, और शायद आप लोगों को मुझे सहन करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। तो आई थिंक आप में से जो कोई भी वीडियो ऑन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऑडियो तो म्यूट ही रहेगा। तो हम लोग भगवत गीता की अगर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण शुरुआत में अर्जुन को जो ज्ञान दिए हैं वो ये है कि पहले आप ये समझो कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। भगवान वहां से शुरू करते हैं और अर्जुन को आगे लेके कर्मयोग के बारे में बताते हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, और फिर मन को कंट्रोल करने के बारे में बताते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान स्टेप बाय स्टेप अर्जुन को आगे लेके जाते हैं और आगे फिर भक्ति की विस्तृत चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोग वहां पर पहुंचे नहीं है, लेकिन भगवान बहुत पहले तो अष्टांग योग के बारे में बता के अर्जुन को जब मन को कंट्रोल करने के लिए वो कहते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि मैं इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, इस बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो कहते हैं कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर कृष्ण अफर्मेशन में वो जवाब देते हैं कि यस अर्जुन, इट इज इंडीड वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड। असंशयम ही महाबाहो मनो निग्रितः चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कहते हैं लेकिन अभ्यास के द्वारा और थोड़ा वैराग्य के द्वारा हम इस मन को वश में कर सकते हैं। और फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, हर परिस्थिति के अंदर तुम योगी बनो। और छठे अध्याय में भगवान कहते हैं योगी शाम अपि सर्वेशाम यद गते मंतरात्मना, के जो अपनी अंतरात्मा में मुझे हमेशा धारण करके रखता है वह जो है वह सबसे ऊंचा योगी है। और उसके बाद फिर सातवें अध्याय से भगवान जो है वो भक्ति योग बताना शुरू करते हैं और नवे अध्याय के अंदर बहुत विस्तृत रूप में। और जब सातवां अध्याय भगवान शुरू करते हैं तो अर्जुन को कहते हैं कि ध्यान से सुन अर्जुन, जो मैं अभी तुझे बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय है और इसको केवल मेरी भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। और आगे अर्जुन को भगवान ले जाते हुए कहते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये कैसा है, ये राज विद्या है, दिस इज किंग ऑफ एजुकेशन। राज गुह्यम, ये बहुत ही गुह्य विषय है, पवित्रम बहुत पवित्र है, इदम उत्तमम और बहुत ही उत्तम है, और इट कैन बी परसीव्ड बाय डायरेक्ट सेंस परसेप्शन एंड इट इज वेरी वेरी जॉयफुल्ली परफॉर्म्ड। तो भक्ति जो है वो बहुत ही आनंद पूर्वक की जाती है। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने में किसी को बहुत टेंशन होता है कि अरे यार अभी मुझे भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं कि बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। और फिर भगवान अपनी भक्ति के बारे में बताते और कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और मन मना भवमत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, हर परिस्थिति के अंदर तू मेरा भक्त बन। मन मना, अपना मन जो है वो मुझ में लगा, जबकि पहले ही हम चर्चा कर चुके मन के बारे में कि मन जो है वो बहुत ही कठिन है, लेकिन भगवान कहते हैं कि उस मन को तू मेरे मन में लगा, मुझ में लगा। मन मना भवमत भक्तो मेरा भक्त बन मध्याजी, और केवल मुझे सरेंडर हो और माम नमस्कुरु, कम से कम एक नमस्कार तो कर। प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं अपने क्लास में कि नमस्कार तो करो, और इस तरह से करने पे हे अर्जुन तू मुझे पा सकेगा और मेरे पास आ सकेगा। तो भगवान भक्ति का मार्ग बताते हैं। तो इस दुनिया में बहुत सारे भगवान के भक्त हुए हैं लेकिन अलग अलग रूप, जैसे अगर ऑब्वियसली ये हमारा विषय नहीं है तो इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि नारद मुनि अलग 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 भक्तों के पास जाते हैं और अल्टीमेटली हर एक भक्त जो है वो एक दूसरे की गुणों के बारे में बताते हुए दूसरे भक्त के बारे में बताता है कि वो मुझसे ज़्यादा एडवांस है, वो मुझसे ज़्यादा एडवांस है। तो इस प्रकार से अलग अलग भक्तों के पास नारद मुनि जाते हैं और अंत में जो है वो गोपियों के पास पहुंचते हैं और उनको पता चलता है कि जो गोपी है वो भगवान की परम भक्ता है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कल ही बहुत ही शुभ महोत्सव श्री राधा अष्टमी का महोत्सव मनाया गया, और क्योंकि हमारी क्लास थर्सडे को होती है तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लीलाओं के बारे में नहीं, लेकिन तत्व से जानने का हम प्रयास करेंगे कि भगवान कौन है, भगवान की शक्ति क्या है, और भगवान की लीलाओं के बारे में अगर कोई समझना चाहे तो पहले उसको भगवान की शक्ति के बारे में समझना चाहिए और भगवान के पोजीशन के बारे में। तो हमारे ब्रज विहारी प्रभु कहते हैं दैट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पावर एंड द पोजीशन ऑफ कृष्णा, इफ वी ट्राई टू जम्प अपॉन द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा वी विल बी डूम्ड। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में सबसे पहले भगवान की शक्ति का वर्णन किया गया है। और प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर भागवत किसी को पढ़ना है तो डायरेक्ट 10th कैंटो पे जंप नहीं मारना चाहिए, सिस्टमैटिकली उसको कैंटो बाय कैंटो, पहले कैंटो के पहले अध्याय के पहले श्लोक से शुरू करके और पूरे तात्पर्य को पढ़ते हुए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, और धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तब जाके हमको श्रीमद् भागवतम समझ में आएगा। क्योंकि भागवतम जो है वो भगवान का साहित्यिक अवतार है, लेकिन भगवान का जब हम दर्शन करते हैं तो डायरेक्ट उनके मुखमंडल का दर्शन नहीं करते हैं। दर्शन की विधि ये है कि भगवान के पहले पैरों से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम पैरों का दर्शन करते हैं और फिर वहां से धीरे धीरे शनय शनय ऊपर जाके और भगवान के घुटनों से, फिर भगवान के नाभि से, उनके वक्ष स्थल से, और फिर उनके मुखमंडल का दर्शन करते हैं। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है इसके 12 स्कंद भगवान का स्वरूप ही है, और वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान के पैरों से लेके उनके मस्तक तक ये 12 स्कंद दिए गए हैं। तो पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो, कि सबसे पहले जो पहला और दूसरा स्कंद है वो भगवान के चरण कमल है, और उसके बाद तीसरा और चौथा स्कंद जो है वो भगवान की जंघा है, और पांचवा स्कंद जो है वो भगवान की नाभि है, छठा स्कंद जो है वो भगवान का वक्षस्थल है, सातवां और आठवां भगवान की दो भुजाएं हैं, नौवां स्कंद भगवान का कंठ है, और दसम स्कंद जो है वो भगवान का मुख है, कमल के समान मुख है, और ग्यारहवां स्कंद जो है वो भगवान का फोरहेड है, माथा है, और बारहवां स्कंद जो है वो भगवान का सिर या मुकुट, जो उसको आप कहना चाहो वो बोलो। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको ये चेतावनी दी और कहा है कि पहले स्कंद के पहले श्लोक से शुरुआत करके श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए और धीरे 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 आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि भारत में और जैसे भक्ति में आने के पहले कई बार कई लोग भागवत सप्ताह का आयोजन करते हैं और भागवत सप्ताह का आयोजन करके सीधे डायरेक्ट कृष्ण लीला पे, और उस कृष्ण लीला से भी राधा रानी के लीला पे और रास पंचाध्याय पे डायरेक्ट वहां पर जंप मारने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद करते हैं कि ये बहुत ही घातक होगा किसी व्यक्ति के लिए जो भगवान की भक्ति करना चाहता है। पहले भगवान का पावर, भगवान का पोजीशन को समझो, उसके बाद आगे जाके भगवान की लीलाओं को समझने की कोशिश करो। और भगवान की लीलाओं में भी पहले भगवान की बाल लीला है, और बाल लीला में कैसे भगवान ने जन्म लिया, उनके जन्म की लीला जो है वो भी बहुत ही अद्भुत है और बहुत तत्व से समझने लायक है। क्योंकि भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो हमारे जैसे जन्म के रूप में नहीं हुआ है कि किसी माँ बाप की उनको जरूरत पड़े। ऐसे बताते हैं कि सबसे पहले वसुदेव जी के मन में भगवान प्रकट हुए, फिर मन से उनके हृदय में प्रकट हुए, और उनके हृदय से फिर देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए, वहां प्रकट हुए, और देवकी के हृदय से फिर देवकी के गर्भ में आए। और जब उन्होंने जन्म भी लिया तो एक साधारण शिशु के भांति जन्म नहीं लिया, अपितु चतुर्भुज नारायण के रूप में वो जन्म लिए, और चतुर्भुज नारायण के रूप में जिसमें उन्होंने पूरे अपने वस्त्र और अपने अलंकार धारण किए हुए थे, उस रूप में भगवान प्रकट हुए। तो उनको देख के पहले तो देवकी और वसुदेव वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, और उनको समझ में नहीं आया कि ये बालक इस प्रकार से कैसे जन्म लिया है, और वो घबरा गए। तब उस बालक ने, भगवान कृष्ण ने ही उनको बताया कि हे माता पिता, ये पहला जन्म नहीं है जो मैं आपसे ले रहा हूँ, इसके पहले भी जब आप सुतपा और प्रश्नी के रूप में आए थे तो मैंने प्रश्नी गर्भ के रूप में जन्म लिया था, फिर मैंने अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, उसके बाद में मैं इवन जब आप दशरथ और कौशल्या के रूप में आए थे तब मैंने जन्म लिया था, और अभी भी मैं आप जब देवकी वसुदेव के रूप में है और वहां पर नंद और यशोदा के रूप में तब मैं ये जन्म ले रहा हूँ। तो इवन नंद और यशोदा के पास में उसी समय साइमल्टेनियसली भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, तो दो कृष्ण का जन्म हुआ था। ये जो मथुरा में जन्म लिए थे वो वासुदेव कृष्ण थे, और गोकुल में जो जन्म लिए थे वो व्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के जो कृष्ण है उन्होंने जन्म लिया था। और फिर वसुदेव जी जब कृष्ण को लेके गए यमुना पार और फिर गोकुल में गए, तब तो वो दोनों कृष्ण एक हो गए। और वहां पर ही यशोदा को एक पुत्री का भी जन्म हुआ था जिसको वो वापस लेके आए। और उस पुत्री को जब कंस उठाकर पटक के मारने लगा तब वो आकाश में उड़ गई और उसने कंस को कहा कि मूर्ख, तू मुझे क्या मारने की कोशिश कर रहा है, तुझे मारने वाला तो ऑलरेडी जन्म ले चुका है। और तब कंस घबरा गया। तानी वे कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो जन्म है वह भी अलौकिक है, दिव्य है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। कहते हैं कि अर्जुन मेरा जन्म और मेरे कर्म जो है वो दिव्य है और उसको तत्व से समझना बहुत आवश्यक है। बिना तत्व के अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो मात खा जाएंगे। ब्रह्मा जी जिनके चार मुख है और पूरा का पूरा ज्ञान से ओतप्रोत है। ब्रह्मा जी का अगर शरीर देखो, जैसे हमारा शरीर जो है वह पांच पंच भूतों से बना हुआ है, अर्थ वायर अर्थ वाटर फायर एयर एंड इथर, वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो सत चित और आनंद है। लेकिन ब्रह्मा जी का जो पूरा शरीर है वो केवल चित अर्थात ज्ञान से बना हुआ है। और इतना भारी भरकम ज्ञान लेके और चार सिर, कहीं बताते कई कई ब्रह्माओं के तो मिलियंस सिर है, वो भी भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाए। और जब उन्होंने बछड़ों को और ग्वालों को चुरा लिया और उसके बाद भगवान कृष्ण ने जो उनके साथ लीला कही की जिसमें ब्रह्मा जी मोहित हो गए, हाँ उसको ब्रह्म विमोहन लीला कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी जब मोहित हो गए और उसके बाद भगवान कृष्ण के पास आके जब प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने प्रार्थना में भगवान कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, इतना सारा ज्ञान लेके और सब कुछ समझने के बाद मैं एक चीज समझा हूं कि मैं आपको समझ नहीं सकता। तो जब ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते हैं, शिव जी नहीं समझ सकते हैं, नारद नहीं समझ सकते हैं, तो हम लोग भगवान को क्या समझेंगे, भगवान की शक्ति को क्या समझेंगे। कि भगवान जो है उसको श्रीमद् भागवतम कहता है जन्मादि यस्य यतः, भगवान वो है जिनसे सभी कुछ प्रकट होता है, वह सभी के श्रोत्र है। और आगे चल के कहते हैं अभिज्ञ स्वराट, भगवान जो है वो अभिज्ञ स्वराट है, स्वतंत्र है। भगवान जो है वो परम नियंता है, पूर्ण पुरुषोत्तम है और अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेशु दुर्लभ दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान जो है वो अद्वैत है, सबके आदि है, अनंत है, उनका कोई सानी नहीं है। वह देवताओं को भी मोहित कर देते हैं और वे भगवान जो है सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये जो भगवान है इसको समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। भगवान जो है वो असंभव को संभव कर देते हैं और संभव को असंभव कर देते हैं। भगवान का ये एट्रीब्यूट है कि वो जो है अनहोनी को होनी कर दे और होनी को अनहोनी। ये गाना भी शायद इन लोगों ने यहीं से चुराया है कि भगवान जो है वो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि अनहोनी को होनी कर देते हैं और होनी को अनहोनी कर देते हैं। तो ऐसे भगवान है, भगवान की शक्ति है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो कई बार कई लोग जो है वो डायरेक्टली भगवान की बस लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं, उनको सुनने का प्रयास करते हैं, या फिर पर्टिकुलरली और उसके स्टेप में आगे जाएंगे तो गोपियों के बारे में या राधा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहले हमको भगवान की शक्ति के बारे में समझना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण कौन है। श्रील प्रभुपाद जी जब राधा अष्टमी पे क्लास दिए तो 25 मिनट का क्लास दिए, उस 25 मिनट में से 24 मिनट केवल कृष्ण के बारे में बखान करते रहे। तो कोई समझ सोच सकता है कि अरे ये राधा रानी के ऊपर क्लास दे रहे हैं या कृष्ण पे क्लास दे रहे हैं, आज राधा अष्टमी है जन्माष्टमी है। तो 25 में से 24 मिनट कृष्ण की शक्तियों के बारे में बताने के बाद प्रभुपाद जी सिर्फ एक लाइन में बोले कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की वो प्रियतमा है जो भगवान को नियंत्रित करती है, और ये जो कृष्ण इतने सर्वशक्तिमान है उनकी शक्ति राधा रानी है, और आज उनका आविर्भाव दिवस है। तो सोचो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमको परंपरा में समझाया है कि तो एक श्लोक है जिसके अंदर एक भक्त ने अपने भाव व्यक्त किए हैं और भगवान की शक्तियों के बारे में बताया है, और वे कहते हैं, अम्भोधि स्थलताम स्थलम जलधिताम धूलि लव शैलताम शैलोमृत कर्णताम तृणम कुलिशताम व्रजम तीर्ण क्षीणताम वहनी शीतलताम हिमम दहनताम आयाति यशिच्छया लीला दुर्ललिताद्भुत व्यसिसने कृष्णाय कृष्णाय तस्मै नमः। तो ये भक्त क्या कहते हैं कि भगवान क्या कर सकते हैं, अम्बोधि स्थलताम, अम्बोधि का मतलब होता है समुद्र, और स्थलताम का मतलब होता है स्थल या भूमि। तो कहते हैं कि समुद्र को भूमि में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात एक क्षण में समुद्र को सुखा सकते हैं। अब सोचो समुद्र को कौन सुखा सकता है, एक बार एक चिड़िया समुद्र के किनारे पे अंडे दी और समुद्र ने अपने लहरों से उस अंडे को अंदर ले लिया और चिड़िया समुद्र को कहने लगी कि कृपया मेरे अंडे मुझे वापस दे दो नहीं तो मैं तुझे सुखा दूंगी। तो समुद्र बहुत जोर से हंसने लगा क्योंकि वो जानता था कि एक छोटी सी चिड़िया समुद्र को क्या सुखा पाएगी। तो लेकिन चिड़िया बहुत डिटरमाइंड थी, उसने अपनी चोंच में एक समुद्र का पानी का एक बूंद उठाया और दूर उड़ के उस पानी के बूंद को डाल के आई और इस प्रकार से करने लगी। तो सोचो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चिड़िया उस समुद्र को सुखा देगी, इम्पॉसिबल, दैट इज द ओनली वर्ड वी कैन से। लेकिन चिड़िया इतना सिंसियरली काम कर रही थी कि गरुड़ जी की दृष्टि उस पर पड़ी और गरुड़ जी ने सोचा कि ये तो बहुत जाती हो रही है और वो समुद्र के पास आके कहे कि इस छोटी सी चिड़िया के अंडे दे दे नहीं तो मैं तुझे सुखा दूंगा। तो समुद्र जानता था कि गरुड़ तो भगवान के नित्य पार्षद है, वो ऐसा कर सकते हैं, तो उन्होंने अंडे दे दिए। लेकिन सोचो गरुड़ को भी समुद्र को सुखाने में बहुत समय लग जाए अगर वो कोशिश करे तो, इतना आसान नहीं है। लेकिन भगवान क्षण भर में समुद्र को सुखा के और स्थल में परिवर्तित कर सकते हैं। अम्बोधि स्थलताम, स्थल अम्बोधि मतलब समुद्र को स्थल में परिवर्तित कर सकते हैं, और स्थलताम जलधिताम, स्थलम जलधिताम, स्थलम मतलब एक बंजर भूमि को जलधि अर्थात एक समुद्र के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। धूली लव शैलताम, धूली का मतलब होता है एक धूल का छोटा सा कण, उस धूली को शैलताम, शैलताम का मतलब होता है पर्वत। क्या कर सकते हैं भगवान, एक छोटे से बारीक धूली के कण को पर्वत बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, शैलोमृत कर्णताम, और शैल मतलब इतने बड़े पर्वत को एक छोटे से कण के भांति बना सकते हैं, मतलब थोड़ी धूली बना सकते हैं। तो भगवान जो है वो छोटे से धूल को पर्वत बना सकते हैं या बहुत बड़े पर्वत को छोटा सा धूल का कण बना सकते हैं। तृणम कुलिशताम, तृणम का मतलब होता है घास का एक छोटा सा तिनका, तृण, उस तृण को क्या कर सकते हैं, कुलिशताम, कुलिशताम अर्थात वज्र बना सकते हैं। इंद्र के जिस हाथ में जो पावरफुल वज्र है उस प्रकार का वज्र बना सकते हैं। तो एक छोटे से तिनके को, भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान चाहे तो एक छोटे से तिनके को एक वज्र के समान या ब्रह्मास्त्र बना देवे। जैसे जब बलराम जी अपनी तीर्थ यात्रा पे थे और जब वो नैमिषारण्य में आए तो उन्होंने देखा कि रोमहर्षण सूत वहां बैठ के और भागवत कथा कर रहे थे, और जब बलराम जी वहां पर आए तो बलराम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम अवतार है, उनमें कोई भेद नहीं है। ऐसे बताया जाता है कि कृष्ण और बलराम में सिर्फ रंग का फर्क है, वन इज ब्लैक वन इज व्हाइट, एक घनश्याम है और एक श्वेत वर्ण के है, इसके अलावा कोई भेद नहीं है। कृष्ण और बलराम एग्जैक्टली सेम है, और वे बलराम जब वहां पर आए तो सभी लोग खड़े हो गए और बलराम जी को बैठने के लिए स्थान दिया। लेकिन बलराम जी ने नोटिस किया कि ये जो भागवत सुना रहा है रोमहर्षण सूत, उसने ना उनको प्रणाम किया ना उनको नोटिस किया, कुछ नहीं किया। तो साधारणतया अगर भागवत क्लास कोई दे रहा है तो उसको उठने की जरूरत नहीं है अगर कोई व्यक्ति आ जाए, लेकिन ये तो कोई व्यक्ति नहीं थे, ये स्वयं बलराम जी थे, भगवान स्वयं आए हैं। तो बलराम जी ने देखा कि ये रोमहर्षण सूत के हृदय के अंदर थोड़ा सा अभिमान हो गया है क्योंकि वो बहुत बड़ा भागवत वक्ता बन गया है। तो कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेता है या बहुत शास्त्र पढ़ के शास्त्रों का ज्ञान अर्जन करने लग जाता है, और तो उसको ऐसा लगता है कि बस मेरे जैसा कोई नहीं है। कई बार हम अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं, मर्यादा अतिक्रमण करने लग जाते हैं, और इस प्रकार से कई व्यवहार हो जाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये ज्ञान जो है ये कई बार हमारे को गधा बना देता है। जैसे लास्ट टाइम हमने ये चीज डिस्कस की थी जन्माष्टमी वाले दिन कि विद्यार विलासे कटाइनु काल परम साहसे आमी, तुम्हारा चरण न भजीनु कभू तुम्हारा किंकर आमी। कहते हैं कि विद्या के विलास में डूब के और मैं एकदम बहुत ही घमंडी बहुत ही अभिमानी व्यक्ति बन गया। और उन्होंने कहा कि पौड़िते पौड़िते भरोसा बढ़ीला, कि जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मेरा भरोसा बढ़ता गया और इतना ज्ञान मैंने अर्जन कर लिया, मुझे लगा बस अब हो गया है ना, अब मैं 30 मार खा बन गया। तो इस प्रकार से रोम हर्षण सूत जो था वो बलराम को देख के, और उन्होंने ना प्रणाम किया और ना ही उनका आदर किया, तो बलराम जी ने एक केवल छोटा सा तृण दुर्वा घास छोटा सा उठा के अपने हाथ में और रोम हर्षण सूत के पास गए और उसको सिर्फ टच किया और रोम हर्षण सूत वहीं पे खत्म हो गया, वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई केवल एक तृण से टच करने के मात्र से। अब सोचो कोई व्यक्ति किसी को तृण टच करेगा तो मरेगा थोड़ी, लेकिन भगवान अगर करेंगे तो बिल्कुल मर जाएगा। हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं, तृणम कुलिशताम, वो वज्र बना सकते हैं उसको, और रोम हर्षण सूत वहीं पे मर गया। तो सारे के सारे ऋषि लोग बलराम जी को कहने लगे कि हे भगवान, ये आपने क्या किया, अभी हमने रोम हर्षण सूत को आशीर्वाद दिया था और अभी वो भागवत सुनाने लगा था, लेकिन अभी उसके एब्सेंस में क्या होगा। तो बलराम जी ने कहा कि आप चिंता न कीजिए, मैं इसको वापिस से जिला देता हूं। तो सब ऋषियों ने कहा कि नहीं भगवान, आप जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ध्येय जरूर होता है, कोई ना कोई हेतु जरूर होता है, आप बिना कोई हेतु के कार्य नहीं करते हैं। तो आपने जो किया वो परफेक्ट है, वो बरोबर है, क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान जो भी कहते हैं जो भी करते हैं वो परफेक्ट है, वो धर्म है, उसके विपरीत जो है वो अधर्म है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रोम हर्षण सूत को आप जाने दीजिए, लेकिन एक पुत्र में अपना पिता जीवित होता है तो उसके पुत्र सूत गोस्वामी सूत को आप व्यासपीठ पे आप बिठा दीजिए और सूत जो है वो हमारे को अभी कथा सुनाएंगे। उस प्रकार से सूत गोस्वामी 88,000 ऋषियों को हेडेड बाय सौनक ऋषि उन्होंने ये भागवत सुनाया, ये एक अलग बात है। तो तृणम कुलिशताम, भगवान क्या कर सकते हैं, छोटे से तृण को वज्र बना सकते हैं, और वज्रम तीर्ण क्षीणताम, और वज्र को एक छोटा सा क्षीण तुच्छ तृण बना सकते हैं, ये भगवान की शक्ति है। हाँ, और भगवान क्या कर सकते हैं, वहनी शीतलताम, वहनी मतलब होता है अग्नि, अग्नि जो है दावाग्नि जो भड़कती है। हाँ, तो कई बार ऐसे बताते हैं कि जब जंगल में आग लगती है दावाग्नि लगती है तो उसको कोई बुझा नहीं सकता, उसको केवल भगवान के आशीर्वाद से अगर कोई वर्षा हो तो वो वर्षा ही उसको बुझा सकती है, अदरवाइज दावाग्नि को बुझाने का और अन्य कोई मार्ग नहीं है। हाँ, अभी हमने देखा अमेजोन में आग लग गई थी, हाँ कितने समय तक वो आग जलती रही, उसमें कितना नुकसान हो गया, कितने पशु पक्षी और दूसरे जो प्राणी है वो मर गए, और कई महीनों तक वो आग जलती रही और पूरी दुनिया हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, कुछ कर नहीं पाई। इसीलिए कहा गया है संसार दावा नलली ढलो का त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। ये संसार जो है ये कैसा है, एक दावाग्नि के जैसा धधकता हुआ एक जंगल है। संसार दावा नल लीढ़लो का, अनल का मतलब होता है जंगल और आग, ये इसके ऊपर केवल गुरु की कृपा की वर्षा होगी तो ही हम इससे बच सकते हैं। तो भगवान क्या कर सकते हैं, वहनी शीतलताम, इतनी धधकती हुई दावाग्नि को शीतलताम अर्थात ठंडा भी नहीं कर सकते, उसको बर्फ बना सकते हैं, उसको बर्फ बना देते हैं भगवान। और हिमम दहनताम, और बर्फ को क्या कर सकते हैं, अग्नि में परिवर्तित कर सकते हैं। सोचो बर्फ को अग्नि में कौन परिवर्तित कर सकता है, तो अग्नि को बर्फ में और बर्फ को अग्नि में कर सकते हैं आयाति यस्य इच्छया, अपनी इच्छा मात्र से भगवान ये सब कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? अंबोधि स्थलताम, समुद्र को स्थल में परिवर्तित कर सकते हैं, स्थलम जलधिताम, और स्थल को समुद्र बना सकते हैं, धूली लव शैलताम, एक छोटे से कण को एक बहुत बड़ा पर्वत बना सकते हैं, और शैलो मृत कणताम, और बहुत बड़े पर्वत को एक धूली का कण बना सकते हैं, तृणम कुलिशताम, एक छोटे से तृण को वज्र बना सकते हैं, और वज्रम तृण क्षीणताम, और वज्र को एक तृण बना सकते हैं, वहनी शीतलताम, दावाग्नि को बर्फ बना सकते हैं, और हिमम दहनताम, उसको बर्फ को दावाग्नि बना सकते हैं अपनी इच्छा के द्वारा, और लीला दुर्ललिता अद्भुत व्यसनीनेन कृष्णई कृष्णस्य तस्मै नमः। तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे जो लीला करते हैं ऐसे भगवान, हाँ, उसको मैं नमस्कार करता हूं। तो आप सोचो कि प्रभु अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, और जो इतने शक्तिशाली है, इतने प्रभावशाली है, इतने ऐश्वर्यमान है, हाँ, परम नियंता है, उनमें थोड़ी सी नटखटता भर दीजिए, उनमें थोड़ी सी मस्ती भर दीजिए, उनमें थोड़ा सा ब्रज रस भर दीजिए, थोड़ा सा वात्सल्य भाव को चखने की भूख भर दीजिए, थोड़ा सा साख्य रस उसमें डाल दीजिए, और ऐसे माधुर्य रस को डाल के उस रसास्वादन करने की इच्छा जागृत कर दीजिए, तो फिर क्या कहना, फिर क्या होगा कि भगवान की शक्ति के साथ साथ भगवान की लीला भी चलेगी, और लीला दुर्ललिता, और इस लीला दुर्ललिता के व्यसन में भगवान जब डूब जाते हैं तो अपने व्रज रस में खुद को ही, हाँ, अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी कर देते हैं, संभव को असंभव और असंभव को संभव बना देते हैं, और उसमें फिर लीला की जो चातुर्य नटखट प्रवृत्ति और ब्रज रस को चखने की जो इच्छा अगर जागृत हो जाए, तो ऐसे भगवान का क्या कहना, ऐसे कृष्ण को मैं नमन करता हूं। तो आप सोचो भगवान की ये शक्ति है, तो पहले भगवान की शक्ति को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रजेंद्र नंदन श्री ब्रजचंद्र वृंदावनेश्वर जो है, उसको हम ढंग से अगर समझेंगे नहीं, तो उनकी परम आराध्या श्रीमती राधा रानी, उसको कैसे समझ पाएंगे? हाँ, ये बहुत ही डिफिकल्ट है हमारे लिए। इसको केवल ब्रज रस में रमे हुए भक्त जो है वही समझ सकते हैं, दूसरा बाहर का कोई व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता। भगवान की भगवत्ता को समझने के लिए हमको थोड़ी बुद्धि चाहिए, लेकिन भगवान की लीला समझने के लिए थोड़ा प्रेम चाहिए, और ऐसा प्रेम जिसको प्राप्त होता है वही भगवान को समझ सकता है, अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट है भगवान को समझ पाना। तो इसके लिए भगवान कृष्ण जो है उसको, और भगवान कृष्ण की शक्ति को केवल गुरुजनों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमको इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा के अंदर इस प्रकार से इतना अच्छा ज्ञान दिया है, इतने ग्रंथों की रचना की है, इतनी पुस्तकें लिखी है, ताकि हम लोग उसको पढ़ के और तत्व से भगवान श्री कृष्ण को समझ सके, और भगवान कृष्ण को समझने के बाद उसकी शक्ति को भी समझ सके। हाँ, शीला प्रभुपाद, तो शीला का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब होता है आध्यात्मिक शक्ति, और ला का मतलब होता है लीला, अर्थात जिस व्यक्तित्व में, जिस व्यक्ति में भगवान की आध्यात्मिक शक्ति और उनकी लीलाओं को समझने का ज्ञान है उसको शीला कहते हैं। हाँ, शीला प्रभुपाद। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हाँ, राधा और कृष्ण दोनों एक ही है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, तो दोनों जो है वो एक आत्मा है, लेकिन उन्होंने दो देह धारण किए हैं, और वो भी क्यों? क्योंकि जैसे हमने सिद्धांत की दृष्टि से देखा कि भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो परम नियंता है, वो अभिज्ञ स्वराट है, सत्यम परम धीमहि है, भगवान आत्मा राम है, भगवान आप्त काम है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भगवान के इच्छा मात्र से क्षण भर में भगवान जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि एक धूली को पर्वत बना सकते हैं, पर्वत को धूली बना सकते हैं, दावाग्नि को बर्फ बना सकते हैं, बर्फ को दावाग्नि बना सकते हैं, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांत के रूप में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन भगवान जब लीला का आस्वादन करना चाहते हैं, लीला के रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो अपने आप को विस्तार करते हैं और भगवान अपने हृदय में से श्रीमती राधा रानी को प्रकट करते हैं। तो सिद्धांत की दृष्टि से भगवान परम नियंता है, लेकिन लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। तो भगवान कृष्ण जो है और राधा रानी जो है वो एक ही है। राधा कृष्ण आइछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। तो क्या करते हैं कि भगवान अपनी लीला का आस्वादन करने के लिए दो रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सिद्धांत की दृष्टि से भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लीला की दृष्टि से उनको राधा रानी की आवश्यकता है। और राधा ही केवल उनको अपना जो है वो आनंद दे सकती है, क्योंकि राधा रानी कौन है? गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी। भगवान को मोहित करने वाली है, भगवान को आनंद देने वाली है राधा रानी। और सिद्धांत की दृष्टि से चाहे भगवान क्यों ना परम नियंता हो, लेकिन लीला की दृष्टि से राधा रानी परम नियंता है। सो कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंजॉयर एंड राधा रानी इज सर्व सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सर्वेटर। एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है, लेकिन दोनों भगवान है। तो राधा रानी लीला की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण को नियंत्रित कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण के पास 64 गुण है और राधा रानी के पास 25 गुण है, लेकिन राधा रानी का 25वां या 26वां गुण यह है कि वो कृष्ण को नियंत्रित कर लेती है, और राधा रानी का ये एक गुण भगवान के 64 गुणों पे भारी पड़ता है। जैसे ऐसा कहा गया है कि पुरुष चाहे कितना बलशाली हो, जीतती हमेशा नारी है, ठाकुर जी के 56 भोग पे एक तुलसी भारी है। भगवान कृष्ण के जो 56 भोग है उसमें अगर आप तुलसी नहीं डालो तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। एक तुलसी का पत्ता जो है उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और ये गोवर्धन लीला में हमने देखा है कि किस प्रकार से जब गोवर्धन को सब कुछ अन्नकूट के रूप में जब ऑफर किया गया, तो जितना कुछ ब्रजवासियों ने बनाया सबका सब गोवर्धन ने ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करके सब कुछ गायब हो गया। और उसके बाद भी कृष्ण जो गोवर्धन के रूप में थे वो जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, अणियोर अणियोर अणियोर, अर्थात गिव मी मोर गिव मी मोर गिव मी मोर, मुझे और दो। तो सब कुछ खत्म हो गया और तब किसी को पता नहीं चला कि अरे अभी हम गिरिराज को क्या दे। हाँ, सब कुछ तो गिरिराज ने हमारा ले लिया है। हाँ, गिरिराज धरण जो है वो हरि है, सब कुछ हमारा ले लिए। तो तभी कृष्ण ने एक छोटे से बालक के रूप में आके कहा कि गिरिराज को एक तुलसी का पत्ता ऑफर कर दीजिए। तो जब एक तुलसी का पत्ता दिया तो गिरिराज प्रसन्न हो गए, कृष्ण प्रसन्न हो गए, और सारा का सारा भोग जो उन्होंने लिया था वो वापिस से अन्नकूट के रूप में सभी ब्रजवासियों को वापिस से दे दिया। तो भगवान जो है वो हमारा भोग ग्रहण करते हैं। हाँ, और भगवान जो है वो भोग कहाँ से भी कैसे भी कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। तो बोले कि भगवान जो है वो अपने किसी भी अंग से कोई भी क्रिया कर सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते हैं, अपने कानों से देख सकते हैं, अपने नाक से बोल सकते हैं। भगवान जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो कई बार कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे आप भोग चढ़ाते हो, भगवान खाते भी हैं क्या? तो इसलिए भजन में कहा गया कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कि भगवान को अगर भाव से हम खिलाएंगे तो भगवान तुरंत उसको ग्रहण कर लेते हैं और वो अपने आंख से ग्रहण कर लेते हैं। एक भक्त तो ये बोल रहे थे कि ये तो अच्छा है कि भगवान हमारा भोग हमको रिटर्न कर देते हैं, अगर 2-4 दिन भगवान ने खाना शुरू कर दिया तो शायद हम लोग भोग चढ़ाना ही बंद कर देंगे। हाँ, तो इसके लिए भगवान खाते हैं, अपने आंखों से खा लेते हैं। तो ये जो है ये भगवान की शक्ति है। तो सोचो कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, क्योंकि भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी है, भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है वो माया देवी है, और भगवान की तटस्थ शक्ति जो है वह हम है। बीच में। तो तटस्थ का मतलब होता है जो तट पे खड़ा है। तो तट पे खड़ा होने का तात्पर्य क्या है कि आप तट में समुद्र के भीतर भी जा सकते हो या समुद्र से विपरीत भी जा सकते हो, दूर भी जा सकते हो। तो हमको चूज करना है कि हमको कहाँ जाना है, हमको अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करना है या हमको बहिरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करना है। दो में से एक ही चीज होगी, यू नो देर इज नो इन बिटवीन, आइदर यू आर इन कृष्णा और यू आर इन माया, देर इज नो इन बिटवीन। महाराज एक बार बता रहे थे कि या तो आप यू नो अंदर जा सकते हो या बाहर आ सकते हो। तो इसलिए कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। और कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, झपट निकटस्थ तारे माया झपटिया धरे। कि जैसे अगर आप कृष्ण को भूल जाओगे तो माया तुरंत हमको पकड़ लेगी। इसलिए हमको भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उसके आश्रय होना है। और राधा रानी के आश्रय होके और तब हम कृष्ण के आश्रय में इजीली हम लोग जा सकते हैं। तो राधा रानी जो है वो भगवान को आनंद प्रदान करती है। और कई बार हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी का हम लोग आश्रय कैसे ले, हाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको राधा रानी का आश्रय लेना है भक्तों के, गुरु के और शास्त्रों के आधार पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो शास्त्र है वो है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी के बारे में बताया गया है। कई लोग ऐसा अज्ञानवश आर्ग्यूमेंट करते हैं कि राधा रानी का तो नाम भी श्रीमद् भागवतम में नहीं लिखा गया है। हाँ तो आप कैसे कहते हो कि राधा रानी श्रीमद् भागवतम में है? तो वे ये नहीं समझते हैं कि अज्ञानवश, हाँ इस बात को नहीं समझ पाते कि जहां पर कृष्ण है वहां पर राधा रानी स्वयं है। कृष्ण और राधा रानी को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से धवलता को, उष्मा से गर्मी से उष्मा को और पुष्प से गंध को दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से हरे पत्तों, मेहंदी के हरे पत्तों में गूढ़ लालिमा छुपी हुई है। हाँ मेहंदी के पत्ते हरे होते हैं लेकिन अगर आप उसको रगड़ो, उसको सुखा के भिगो के अगर हाथ पे हम लगाते हैं तो वो हरी मेहंदी लाल रंग लेके आती है। तो जिस प्रकार से हरे मेहंदी के पत्तों में लालिमा छुपी हुई है, गुड़ लालिमा छुपी है, उसी प्रकार से प्रेम और रस के इस भागवत शास्त्र में, भागवत पुराण में प्रेम और रस की प्रतिमूर्ति श्रीमती राधा रानी इसमें समाविष्ट है। तो भागवत के हर श्लोक में, हर पेज पे श्रीमती राधा रानी है। तो भागवत के द्वारा हमको राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए। और भगवान जो है वो भागवत जो है वो भगवान का साहित्यिक अवतार है। हमने कई बार इस चीज पे चर्चा की है कि इदम भागवतम नामम पुराण ब्रह्म संमितम। तो भागवत जो है वो श्री कृष्ण का एक साहित्यिक अवतार है। और उसी प्रकार से भागवत के अंदर जो भक्ति दी गई है उस भक्ति को आचार्यों ने निकाला है। और जैसे ऐसे बताया जाता है कि समझो अगर भागवत के दसम स्कंद को अगर आप खीर से उसकी तुलना करो तो उस गाढ़ी मीठी खीर को आचार्यों ने लिया है, उसके अंदर बादाम, पिस्ता, काजू, द्राक्ष, कर्पूर, केसर और इत्यादि ये सब डाल के और उसके उन्होंने उसको और स्वादिष्ट बनाया है। और वो है भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये हमारा जो एक दूसरा शास्त्र है जिसको कहते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो श्री रूप गोस्वामी ने इसकी रचना की है, उन्होंने भक्ति को लेके और भक्ति रसामृत सिंधु को दिया है, जिसका सारांश वर्जन श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, जिसमें केवल भक्ति और केवल भक्ति के बारे में ही बताया गया है। लेकिन ऑब्वियसली वो एडवांस स्टेज है, वो आगे का स्तर है। तो जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का साहित्यिक अवतार है, उसी प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु श्रीमती राधा रानी का साहित्यिक अवतार है। और भागवत को अगर हमको अच्छी तरह से समझना है तो हमको भगवान श्री कृष्ण को तत्व से समझना पड़ेगा। और ये तत्व क्या है? तो हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु बोलते हैं कि ये तत्व पंच तत्व है, जिसका श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अंदर ये श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमधे सुमेधस। तो बताते हैं कि कृष्ण वर्णम तिशा अकृष्णम, के कलयुग के अंदर भगवान कृष्ण आए हैं लेकिन अपने घनश्याम के रूप में नहीं, अकृष्ण अर्थात सफेद या फिर गौरांग, हाँ, गोरे रंग के रूप में सुनहरे रंग के अंदर आए हैं, जिसकी चर्चा जैसे हमने पहले भी बताया था कि इवन विष्णु सहस्त्र नाम, जिसके अंदर कहा गया है कि सुवर्ण वर्ण हिमांगो वरांग चंदनांगति, कि भगवान कलयुग के अंदर आते हैं हिमांग अर्थात सुनहरा वर्ण लेके। तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण करके और कलयुग के अंदर प्रकट हुए हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी है। श्री राधार भावे वे गोरा अवतार, हरे कृष्णा नाम गौर करिला प्रचार, वासुदेव घोष बोले करी जड़ हाथ, जय गौर से कृष्णा से जगन्नाथ। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और अपने अकेले नहीं आए हैं। तो भगवान जब भी आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं और कोई न कोई शस्त्र लेके आते हैं अपने हाथ में। हाँ, परशुराम जी आए अपना फरसा लेके आए, नरसिंह भगवान अपने नाखून लेके आए, भगवान रामचंद्र जी अपने धनुष बाण को लेके आए, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन को लेके प्रकट हुए। हाँ, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, जब आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई हथियार नहीं लिया। तो संग उपंग, हाँ, अपने संग में अपने पार्षदों को लेके आए। तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगो पांगास्त पार्षदम, वो अपने पार्षदों को लेके आए जो उनके अस्त्र शस्त्र है, और क्या कर रहे हैं, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, वो यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग के अंदर केवल संकीर्तन यज्ञ जो है वही रिकमेंड किया गया है। कलिर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम कहता है कि ये जो संसार है, ये कलयुग पूरे एक दुखों का महासागर है, और इस महासागर के अंदर केवल एक अच्छा गुण है, और वो ये है कि कृष्णाद कृष्ण का जो कीर्तन हम लोग करते हैं तो मुक्त संग परम व्रजेत, तो हम यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण भगवान का अवतार जो कलयुग में हुआ है वो नाम के रूप में हुआ है, और हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो भगवान का नाम, भगवान का नाम और भगवान का नाम ही हमको तार सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, भगवान का नाम ही आखिरी रास्ता है। तो वे आए हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय, यजंती ही सुमेधस, यजंती मतलब उनकी पूजा करते हैं, कौन, सुमेधस, मेधस का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, और सुमेधस का मतलब होता है ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, जो सबसे ज्यादा विद्वान है वो क्या करता है, कलयुग के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व की आराधना करता है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये जो पंच तत्व है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप, भगवान का जो है वो भगवान है लेकिन भक्त का रूप लेके आए हैं, और नित्यानंद प्रभु जो है वो भगवान का प्रकाश स्वरूप है जो पहला विस्तार है, और अद्वैत आचार्य जो है वो भगवान का ईश अवतार है जिससे सारे अवतार प्रकट होते हैं, और गदाधर पंडित जो है वो राधा रानी है, वो राधा रानी के स्वरूप है, और शिवास जो है, शिवास पंडित या शिवास ठाकुर, वे भक्त, वे नारद मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं। और ये पंच तत्व के माध्यम से हम कृष्ण तत्व को समझ सकते हैं और फिर राधा तत्व को समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग पंच तत्व को नहीं समझेंगे हमारे को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए श्रीमती राधा रानी को अगर अप्रोच करना है हमारे को, तो वो पंच तत्व के माध्यम से करना चाहिए। ये सबसे सुरक्षित और सबसे आसान और सबसे सेफ मार्ग है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति किस प्रकार से की जाती है वो हमको सिखाया है, और इसीलिए हमारी भक्ति जो है वो दो ट्रैक पे चलती है, एक गुरु ट्रैक और एक कृष्णा ट्रैक। हाँ, और ये दोनों ही ट्रैक बहुत आवश्यकता है इस ट्रेन को दौड़ाने के लिए, क्योंकि अगर हम केवल गुरु ट्रैक को ग्रहण करेंगे तो मायावादी बन जाएंगे, और अगर केवल कृष्ण को ग्रहण करेंगे और गुरु को ग्रहण नहीं करेंगे तो सहजिया बन जाएंगे। इसके लिए गुरु जो है वो हमको अच्छी तरह से ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से हमको भक्ति करनी है। और कृष्ण भी गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। इस तत्व को अगर समझना है तत्वदर्शी लोग के पास जाना पड़ेगा, और वे तत्वदर्शी लोग जो है वे तुमको ज्ञान दे पाएंगे जब तुम उसके पास जाओगे, उनकी सेवा करोगे, और सेवा करने के बाद उनसे जिज्ञासा करोगे, उनसे प्रश्न पूछोगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमको किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को समझना है और राधा रानी को समझना है, नहीं तो केवल लीला समझने का प्रयास करेंगे और तत्व को नहीं समझेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और क्योंकि कृष्ण खुद अपने आप को कभी समझ नहीं पाए, हाँ, तो ऐसे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सर्वज्ञ है, हाँ, स्वराट है, सत्यम परम धीमहि, ये आदि है, अनंत है, लेकिन एक चीज है जो कि कृष्ण भी समझ नहीं सकते हैं, हाँ, और वो क्या है? राधा रानी है। अभी कोई ऐसा प्रश्न उठा सकता है कि अगर कृष्ण सर्वज्ञ है, हाँ, इंग्लिश में एक वर्ड है ओमनीसेंट, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, तो कोई ऐसा प्रश्न उठा सकता है कि अगर भगवान ओमनीसेंट है, सर्वज्ञ है, तो वे फिर राधा रानी को कैसे नहीं जानते, राधा तत्व को कैसे नहीं जानते हैं? तो बताते हैं कि ये भगवान की अपूर्णता नहीं है कि वो कुछ नहीं जानते हैं, ये भगवान की पूर्णता का ही रूप है। क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रश्न भी उठा सकता है कि अगर भगवान भगवान है तो उनमें सारे एट्रीब्यूट होने चाहिए, अगर सर्वज्ञ का एट्रीब्यूट है तो कुछ नहीं जानने का भी एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो क्या नहीं जानते भगवान वो क्या तत्व है? तो बताते उसका उत्तर है कि वो राधा तत्व है जो भगवान नहीं समझते हैं, और यही भगवान को पूर्ण बनाता है। क्योंकि भगवान, जैसे अगर किसी ने एक बार प्रश्न किया था कि भगवान क्या कोई ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको वो खुद नहीं उठा सके, तो उत्तर क्या है? तो कोई कहेगा कि नहीं, भगवान ऐसा पत्थर नहीं उठा बना सकते जिसको खुद नहीं उठा सके। तो फिर लोग सोचेंगे, अरे तो फिर वो भगवान किस चीज के? और अगर किसी ने ऐसा उत्तर दे दे कि नहीं, भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो वो खुद भी नहीं उठा सके, तो फिर दूसरा प्रश्न उठाएंगे कि फिर वो भगवान कैसे हुए? हाँ, पत्थर तो बना दिया लेकिन उसको उठा नहीं सकते, तो भगवान कैसे हुए? भगवान है तो उसको उठाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उसका जवाब दिया कि भगवान वो भगवान है जो ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो उसको उठा नहीं सके, लेकिन ऐसे पत्थर बनाने के बाद भगवान उसको उठा लेते हैं। तो ये भगवान जो है वो असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देते हैं, लेकिन वे भगवान जो है वे भी राधा रानी को नहीं समझ सकते हैं तत्व से। इसलिए कहते हैं कि कई बार मैं विह्वल हो जाता हूँ, उन्मत्त हो जाता हूँ, और समझ में नहीं आता है राधा रानी का प्रेम जो इतना मेरे प्रति बढ़ता है उसको मैं किस प्रकार से समझूं। तो तुकाराम महाराज उदाहरण देते हैं कि गाय का दूध अमृत के समान है, लेकिन अपने गाय अपने दूध का आस्वादन खुद नहीं कर सकती, बछड़ा करता है। चीनी जो है वो बहुत ही मीठी है, लेकिन चीनी अपना आस्वादन खुद नहीं कर सकती, जीवा उसका आस्वादन करती है। और कमल के अंदर अमृत भरा हुआ है, लेकिन उस कमल अमृत का आस्वादन कमल खुद नहीं कर सकता, लेकिन एक भंवरा कर सकता है। उसी प्रकार से कृष्ण के अंदर कृष्ण प्रेम भरा हुआ है और उसका आस्वादन कृष्ण नहीं कर सकते, केवल राधा कर सकती है या राधा जैसे भक्त कर सकते हैं। तो कृष्ण सोचते हैं कि अगर मुझे इस प्रेम का आस्वादन करना है तो मैं क्या करूं? तो राधा रानी कहते हैं कि आप ऐसे नहीं कर पाओगे, जब तक आप मैं नहीं बनूंगे, मतलब आप राधा का स्वरूप लेके नहीं आओगे, तब तक आप इसको समझ नहीं सकते। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा का भाव धारण करके श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, ताकि राधा का ये जो भाव है, ये जो रसास्वादन राधा रानी करती है जो कृष्ण भी नहीं कर सकते, उसका रसास्वादन करने के लिए वे प्रकट हुए। और उन्होंने फिर ब्रज भक्ति को प्रकट किया, हाँ, क्योंकि एक बार कृष्ण भी सोचने लगे कि ये सारे के सारे लोग जो है ये मेरे पैरों में हमेशा पड़े रहते हैं, या उसके पैरों पे लटके हुए हैं, मेरे पैर में ऐसा क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपनी शिक्षा अष्टकम में कहते हैं कि कृपया तव पाद पंकज स्थितम धूलि सदृशम स विचिंतय, अई नंद तनुज किंकरम पतितम में माम विश्व में भयाम भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, कि हे कृष्ण मेरे को अपने पैरों के धूली का एक कण बना दो। हाँ, तो भगवान भी सोच रहे हैं। तो मार्कंडेय मुनि ये दृश्य देखते हैं प्रलय के समय कि पानी ही पानी हो गया है हर जगह पे, और एक बरगद के पत्ते के ऊपर भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से नन्हे से शिशु के रूप में और तैर रहे हैं, और अपने नन्हे से हाथों से, अपने नन्हे से पैरों को पकड़कर नन्हा सा अंगूठा जो है वो अपने मुख में डाल रहे हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। तो क्या कर रहे हैं कि अपने हाथों से अपने पैर को पकड़ के और अपने अंगूठे को चूस रहे हैं, क्योंकि वो पता लगाना चाहते हैं कि भाई मेरे में ऐसा क्या है, मेरे पैर में ऐसा क्या है कि जो सब मेरे मेरे पैरों का आश्रय लेना चाहते हैं, तो मैं पता लगाना चाहता हूं। तो वे भगवान स्वयं विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपनी लीला समझने के लिए इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो हम ढंग से मतलब भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को समझ सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर कृष्ण को समझना है तो राधा रानी को समझना बहुत आवश्यक है, और राधा रानी को तब तक हम नहीं समझ सकते, या कृष्ण को हम लोग तब तक नहीं पा सकते जब तक राधा रानी को हम प्राप्त न कर पाए, और राधा रानी को तब तक हम नहीं समझ सकते जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ पाए, और श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम तब तक प्राप्त नहीं हो सकता, उनकी कृपा तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त न हो, और नित्यानंद प्रभु की कृपा तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि हमको गुरुवर की कृपा प्राप्त न हो, और गुरु को की कृपा प्राप्त करने के लिए वैष्णवों को प्रसन्न करना पड़ेगा, वैष्णवों की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो जब वैष्णवों की हम कृपा करेंगे तब जाके कहीं हम गुरु को और नित्यानंद प्रभु को, जो कि आदि गुरु के स्वरूप है, श्री चैतन्य महाप्रभु को, श्रीमती राधा रानी को और कृष्ण को पा सकते हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी क्या करती है कि यदि हम डायरेक्ट कृष्ण के पास जाएंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मात खा जाएंगे, हमको समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब अपराध, जब इंद्र ने अपराध किया कृष्ण का गोवर्धन लीला में, तो कृष्ण डायरेक्ट अर्जुन इंद्र जो है वो डायरेक्ट कृष्ण के पास पहुंच नहीं सके, इंद्र ने कृष्ण का अपराध किया था, तो वे सुरभि माता के थ्रू, सुरभि गाय के थ्रू उनके पास गए। तो राधा रानी जो है वह माँ स्वरूप है, हमारी माता है, बहुत ही करुणामय है, कृपामय राधा है। तो इस राधा रानी की शरण ग्रहण करने के लिए जब हम उनके पास जाते हैं तो राधा रानी हमको कृष्ण के पास रिकमेंड करती है, और एक बार राधा रानी ने अगर कृष्ण के पास हमको रिकमेंड कर दिया तो कृष्ण कभी उसको नकार नहीं सकते। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, कि भगवान के भक्त ने अगर हमको एक बार रिकमेंड कर दिया, राधा रानी ने रिकमेंड कर दिया, तो हमको बिल्कुल कृष्ण का आश्रय हमको प्राप्त हो ही जाएगा। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो यही इच्छा करते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार से भगवान के संग में, भगवान के भक्तों के संग में रहे। रसखान जी एक बहुत ही बड़े भगवान के भक्त हुए हैं, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे दोहे की रचना की है जो हमको स्कूल में आता था, स्कूल की किताबों में हम इसको पढ़े हैं, और बहुत ही सुंदर रूप में वे अपना भाव प्रकट करते हुए कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तो बस जहां पर आप चाहो, पर आपका संग और आपके भक्तों का संग मैं नहीं छोड़ना चाहता। तो कहते हैं, मानुस हो तो वही रस खानी, बसो संग गोकुल गाव के ग्वारिन, जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदंब के डारन। वो कहते हैं कि हे भगवान, अगर किसी पुण्य प्रताप से यदि मेरा वापिस से जन्म हो और मनुष्य की योनि मुझे प्राप्त हो, तो मुझे ब्रज में, मुझे गोकुल के ग्वाल के ग्वारिन, मुझे गोकुल में, ब्रज में मुझे जन्म देना, ताकि मैं आपका एक 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 गोप बन सकूं, और आपके भक्तों का संग कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। और यदि मेरा इतना सौभाग्य नहीं है और दुर्भाग्यवश अगर मुझे पशु योनि में अगर जन्म मिले, तो भी इतनी कृपा करना कि मुझे जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो नंद महाराज की जो गाय है, नंद महाराज के काफिले की गाय बनाना, ताकि मैं एक गाय, एक छोटे से बछड़े के रूप में आपके पीछे 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 चल सकूं और आपकी सेवा कर सकूं, आपको प्रसन्न कर सकूं। और कहीं दुर्भाग्यवश अगर मैं पत्थर बन जाऊं, तो मुझे गिरिराज गोवर्धन की तलहटी का पत्थर बना देना, जिसको आपने अपने छोटी सी उंगली पे धारण किया था, और यदि मुझे पक्षी योनि मिले तो मुझे कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो यमुना के किनारे पे एक कदम्ब के वृक्ष के ऊपर मुझे एक छोटा सा पक्षी बना देना, ताकि वहां पर बैठकर मैं आपकी लीला का रसासादन कर सकूं और उसमें भाग ले सकूं, उसको उसको देख सकूं। तो इस प्रकार से भक्त जो होता है वो हमेशा कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का आश्रय लेना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है। और श्रीमती राधा रानी जो है वो तो भगवान की इतनी बड़ी परम भक्ता है कि जो कृष्ण को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, कृष्ण को किस प्रकार से आनंद देना है, वो सिर्फ श्रीमती राधा रानी जानती है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे हो। माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है। भगवान श्री कृष्ण कितनी लंपटा उनके साथ करते हैं, कितना भी कुछ करे, कभी साखरी कौर पे उनका टैक्स कलेक्ट करते हैं, कभी उसकी मटकी फोड़ देते हैं, कभी माखन चुरा लेते हैं, और क्या क्या पता नहीं करते, लेकिन फिर भी राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की को प्रेम देने के लिए इतनी उनकी ललायत रहती है कि जो कुछ भी करती है अपना सर्वस्व सर्वकांता भगवान की जो है वो उनका जो भी कार्य रहता है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती है। अगर कुकिंग करती है तो भी भगवान श्री कृष्ण के लिए, गाती है तो भी भगवान कृष्ण के लिए, वाद्य बजाती तो भी भगवान कृष्ण के लिए, और भगवान कृष्ण को सर्वस्व तो गोविंद जो सर्वकांता इसको कहा जाता है। तो श्रीमती राधा रानी कई कभी कभी ऐसा होता है कि मान कर जाती है, तो क्योंकि राधा अष्टमी है इसलिए मैंने सोचा कि केवल एक छोटी सी लीला ही हम खाली अंत में, जैसे बताते हैं कि पूरे मेन कोर्स के बाद जो एक डेजर्ट होता है, जो मिठास होता है, जैसे जब सनातन गोस्वामी ने भी जब दामोदर अष्टकम की रचना की तो इतने पद भगवान श्री कृष्ण के कहने के बाद में लास्ट में श्रीमती राधा रानी के प्रति अपनी अर्जी डाल दी और कहा कि कृष्ण तुम मुझे रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी जब मैं जो मैं कहने जा रहा हूँ उसमें तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं अपने लास्ट श्लोक के अंदर, दामोदर अष्टकम का लास्ट श्लोक क्या है, नमस्ते दीप्ति धाम ने तदीयो दरायाथ विश्वस्य दामने, नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो हमारे आचार्य जानते हैं कि कृष्ण के पास अगर अर्जी देंगे तो कृष्ण जो है वो हमारी अर्जी रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे जब वो कहते हैं कि यू नो नमो नंत देवा नमो नमो नंत, एनीवे वो कहते हैं कि अनंत विष्णु, आप विष्णु हो, आप ये हो वो सब कुछ करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि यार ये सारी बातें मैं नहीं सुनूंगा। तो कहते हैं कि आपने कुबेर के बच्चों पे भी कृपा की थी, हाँ तो भगवान वो भी हमको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन राधा रानी का नाम लेंगे तो रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो कभी कभी श्रीमती राधा रानी भगवान से मान कर जाती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे बरसाना में मानगढ़ है, मान मंदिर में श्रीमती राधा रानी भगवान से मान कर गई और गुस्से हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण उसको मनाने लगे और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे इस जीवन में कभी भी किसी बात का कष्ट या कठिनाई नहीं होती है राधे, मुझे केवल एक बार थोड़ा सा कष्ट का आभास हुआ था जब मेरे पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा गया था समुद्र मंथन के समय, लेकिन वो भी इतना कष्टदायक नहीं था, लेकिन जब तुम मुझसे रूठ जाती हो तो मुझे बहुत कष्ट होता है। और कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक चले जाते हैं, लेकिन उस दिन राधा रानी उनसे मान नहीं रही थी, तो कृष्ण उनको मनाने के लिए और उनके चरणों पे अपना शीश रख दिए। सोचो भगवान श्री कृष्ण जिनके नख की धूली को पाने के लिए शिव ब्रह्मा व्यास नारद ये सारे के सारे लोग जो है ललायत रहते हैं, लक्ष्मी ने इतने हजारों करोड़ों साल तक तपस्या की, वह श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों पे अपना सर रख देते हैं। और ये जयदेव गोस्वामी इसका अनुवाद कर रहे थे, तो जयदेव गोस्वामी एक बहुत बड़े भगवान के प्रकट भक्त हुए हैं जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है, और उस गीत गोविंद को आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में रोज गाया जाता है। और ये जयदेव गोस्वामी इन्होंने जब ये श्लोक की रचना कर रहे थे, लिख रहे थे, तो अचानक इनका हाथ रुक गया और थोड़े से घबरा गए, कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि अरे भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अभिज्ञ स्वराट है, सत्यम परम धीमही है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, वो एक साधारण गोपी के चरणों में क्यों गिरेंगे, राधा रानी के चरणों में क्यों गिरेंगे। तो थोड़ा थोड़ा उनका हाथ रुक गया, हालांकि उनको इस बात का स्मरण था कि लीला हुई है और भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को मनाने के लिए उनके चरणों में गिर पड़े थे। लेकिन जब इस श्लोक को लिखने लगे तो थोड़ा रुक गए और फिर उन्होंने सोचा कि मैं काम करता हूँ, मैं जाके थोड़ा स्नान करके आता हूँ, तो यमुना में जाके जब मैं स्नान करके आऊंगा तब थोड़ा मेरा माथा थोड़ा ठंडा होगा और थोड़ा वापस से और मैं मनन करके और फिर मैं श्लोक को लिख पाऊंगा। तो अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम थोड़ा मेरे लिए प्रसाद बना के रखो, मैं जाके और स्नान करके आता हूँ। तो वे स्नान करने के लिए गए लेकिन 2 मिनट में वापस आ गए। तो हालांकि वो जयदेव गोस्वामी 2 मिनट में नहीं आए, वो तो स्नान कर लिए गए थे, लेकिन कृष्ण स्वयं जयदेव गोस्वामी का रूप धारण करके और 2 मिनट में वापस आ गए। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि अरे क्या हुआ स्वामी, आप तो नहाने के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वो पद याद आ गया है, तो वो मैं पद की रचना करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा। तो वे अंदर आए और उन्होंने लिख दिया अपने सुंदर हाथ से हस्ताक्षर करके, स्मर गरल खंडनम मम शीरसी मंडनम देही पाद पल्लवम उदारम। तो उन्होंने लिखा कि हे राधा रानी, मैं तुम्हारे चरणों पर नमन करता हूँ और देही पाद पल्लवम उदारम, आप उदार होके और अपने चरणों का जो है वो मुझे आश्रय दे दो। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, बस धूल ही मिल जाए। तो भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, हालांकि हमको ये प्रार्थना इस प्रकार हम ओपनली नहीं करते हैं और हम केवल राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में राधा रानी के दिन केवल राधे 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 जय जय माधव दैत्य गाते हैं। अदरवाइज हमको श्रील प्रभुपाद ने जो मेथड बताया वो है हरे कृष्णा। सो हरे भी जो है वो राधा रानी का ही संबोधन है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरुआत राधा रानी से है हरे से और अंत भी हरे से और बीच में भी हरे। तो हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को युगल रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और राधा का नाम हम नहीं लेते हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने भी वो नाम नहीं लिया था। हाँ, इसके लिए हम जो है वो हरे कह के संबोधन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक की रचना कर दी, स्मरर गरल खंडनम मम शीरसी मंडनम देहि पाद पल्लवम उदारम। तो इस प्रकार से उन्होंने इस श्लोक की रचना की, फिर अपने जयदेव गोस्वामी की पत्नी को कहा कि मुझे अभी भोग प्रसाद खाना दे दो। वो खाए और फिर वहां से उन्होंने कहा मुझे 1 मिनट काम है, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। तो वो चले गए, फिर आधा घंटा हुआ और जयदेव गोस्वामी वापिस से आए और जयदेव गोस्वामी आके और अपनी पत्नी से कहने लगे कि चलो चलो प्रसाद दो। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि अरे अभी आधे घंटे पहले तो आपने प्रसाद लिया था, ये आपको क्या हो गया अभी। तो उन्होंने कहा मैंने प्रसाद लिया था, अरे मैं तो नहाने गया था। तो कहे हाँ आप नहाने गए थे लेकिन 2 मिनट में वापिस आ गए। बोले आपको पद याद आ गया तो आपको पद की रचना करनी है। तो तब जयदेव गोस्वामी का माथा ठनका और उन्होंने सोचा कि अरे ये कौन आया है। और जाके जब उन्होंने देखा तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लिखावट के अंदर ये श्लोक लिखा हुआ है। और तब जयदेव गोस्वामी को समझ में आया कि उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण जो है वो इस बात को लिखने के लिए कि वो किस प्रकार से वो श्रीमती राधा रानी के नियंत्रण में है। तो राधा रानी की जो ये क्वालिटी है, मैंने कहा था कि वो कृष्ण को नियंत्रण करती है प्रेम के वशीभूत होकर, वो उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। और तब जयदेव गोस्वामी को ये बात समझ में आई और उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि तू कितनी भाग्यशाली है कि तुझे अपने हाथ से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम ये राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में ही ये राधा रानी की जो इस प्रकार की जो लीला है उसका वर्णन करने का साहस करते हैं, अदरवाइज हमारी कोई योग्यता नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक छोटा सा मेंढक यदि प्रशांत महासागर के तट पर बैठा महासागर की गहराई को मापने का अगर सोचेगा भी तो भी उसके लिए संभव नहीं है। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो कि अभिज्ञ स्वराट है वे राधा रानी को समझ नहीं पाते, उनकी लीलाओं को समझ नहीं पाते, शिव जी समझ नहीं पाते हैं, ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते हैं, तो हमारे जैसे शुद्र जीव जो है वो क्या समझ पाएंगे। हाँ, आमी जीव शुद्र बुद्धि सहज अस्थिर ईश्वरेर ईश्वरेर कोटि लीला समुद्र गंभीर, हाँ, कि भगवान की जो लीला है वो तो समुद्र के समान है और हम तो छोटे से जीव मेंढक के समान है, क्या समझ सकते हैं। लेकिन इस राधा रानी के आविर्भाव के दिवस में, उनके जन्म दिवस पर, उनके प्राकट्य दिवस पर हम उनसे कृपा की याचना करते हैं, और ताकि वो हम पे प्रसन्न हो के हमें आशीर्वाद दे, ताकि हम श्री श्री राधा कृष्ण की, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की, राधा गोविंद देव जी की, राधा मदन मोहन जी की हम प्रेममयी भक्ति से सेवा कर सके और अपने जीवन के लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सके और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना ही कह के मैं यहाँ पर रुकूंगा। तो आज मैंने सोचा कि क्योंकि राधा अष्टमी का उत्सव है, इसीलिए हमने थोड़ा सा राधा रानी के बारे में कह दिया। तो एक्सटर्नली तो देखा जाए तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वी आर इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट इंटरनली वी आर इसरॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर राधा कॉन्शियसनेस, बिकॉज गौड़ीय भक्त जो होते हैं, यू नो, ऐसे विष्णु के भक्त को कहते हैं वैष्णव, कृष्ण के भक्त को कहते हैं कार्ष्णव, और राधा रानी के जो भक्त थे उसको कहते हैं गौड़ीय। हाँ, गौड़ीय भक्त वो होते हैं जो राधा रानी को तत्व से जानने का प्रयास करते हैं और उनकी सेवा करते हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण का कृपा हमको प्राप्त हो सके। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा छोटा सा प्रयास किया, इसमें अगर कोई भी त्रुटि है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा कटाक्ष प्रदान करे, ताकि हम लोग भी वैष्णव बन सके, और वैष्णवानाम यथा संभो, भगवान शिव जो है वो वैष्णवों में परम वैष्णव है, वे स्वयं राधा रानी का कृपा कटाक्ष की याचना करते हैं, और उन्होंने राधा कृपा कटाक्ष स्तव राज की रचना की है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक लिखे हैं, और वहां पर राधा रानी से अपनी कृपा की याचना करते हैं। तो इस श्लोक का उच्चारण करके और इस क्लास को मैं यहीं पे विराम दूंगा। तो शिव जी स्वयं कहते हैं, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिदेव भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपेशी राधिका नमोस्तुते। वे कहते हैं कि हे वैदिक बलिदानों की रानी, हे पवित्र गतिविधियों की रानी, हे भौतिक जगत की रानी, हे लोक तंत्रों की रानी, हे वैदिक विद्वानों की रानी, हे ज्ञान की रानी, हे भाग्य देवियों की रानी, हे धैर्य की रानी, हे श्री वृंदावन की रानी, हे खुशियों का वन, हे ब्रज की रानी, हे सामग्री, हे साम्राज्ञी, हे श्री राधिका, मैं सम्मान पूर्वक आपको नमस्कार प्रदान करता हूं और आपके कृपा कटाक्ष की याचना करता हूं। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, जय
जय
गौर निताई की जय, श्री
जय
प्रभुपाद की जय, श्री
जय
गुरुदेव की
जय
अनंत कोटि
जय
वैष्णव की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि
हरि बोल।
थैंक
यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरि
जय
बोल,
थैंक यू प्रभु,
अति सुंदर।
हरे कृष्णा, सो थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम लोग पुष्पांजलि करेंगे श्रीमती गौर निताई। सो पुष्पांजलि अभी हम लोग अर्पण करेंगे, और क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड है तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे हमारे घर पे करेंगे, और आप सबके बिहाफ पे हम श्रीमती राधा रानी को पुष्प अर्पण करेंगे। अर्थात हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, मन बुद्धि, हाँ, तो मनसा वाचा और कर्मणा, हाँ, तीनों तीनों रूप से हम जो त्रिभंग ललित भगवान श्री कृष्ण है उनको और उनकी अंतरंगा शक्ति लादिनी शक्ति राधा रानी को अभी पुष्प अर्पण करेंगे। तो मैं इस कैमरे को वहां पे टर्न करता हूँ, और उसके साथ साथ में मैं ब्रह्म संहिता जो है उसको बजाऊ, मतलब चलाऊंगा, तो आप लोग उसका आस्वादन कीजिए और इसको देखिए, और 7-8 मिनट में ये ब्रह्म संहिता का पाठ पूरा हो जाएगा, एंड वी विल कंक्लूड द लेक्चर। उसके बाद मुझे पता है कि समय बहुत हो चुका है, लेट बहुत हुआ है, पर्टिकुलरली इंडिया में तो बहुत लेट हुआ है, लेकिन अगर फिर भी आप जुड़े रहना चाह सकते हैं और अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई कमेंट है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू डिस्कस एंड वी कैन हैव एसोसिएशन ऑफ ईच अदर इन दिस वे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. श्रीमती राधा रानी की जय. ये मैं इसको घुमा रहा हूँ, यहाँ पे मम्मी है. हरे कृष्णा बोल.
हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा. एक टेबल लाओ जरा. अन्य माता जाकर वास्ते. तो यहाँ पे आप देखिए हमारे आपको शायद दिखाई देगा, तो ये राधा और कृष्ण है और उनके बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु है. तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नहीं अन्य. और श्री श्री गौर निताई है और यहाँ पर उनके मोर, तोते, हाथी, गाय सब कुछ है. और जगन्नाथ जी के भी आपको मैं दर्शन करवाता हूँ. पहले हम लोग गुरु परंपरा का दर्शन करेंगे और गुरु परंपरा के बाद में हमने गौर निताई यहाँ से वहां पे रखे हैं. श्री गोपाल जी और श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का आप दर्शन कर सकते हैं. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन से जय जगन्नाथ.
जय जगन्नाथ.
जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. जय बलदेव. जय सुभद्रा मैया. जय सुदर्शन. जय गौर निताई.
मैं यहाँ पर ये प्ले करता हूँ आपके लिए और आई होप यू आर एबल टू सी इट प्रॉपरली. दिखाई दे रहा है?
यस प्रॉपर्ली.
यस
प्रॉपर्ली. ये ब्रह्म संहिता है जो कि हमारे प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, बहुत ही अच्छे भगवान के उच्च भक्त है जिनका नाम है महात्मा प्रभु, हिज ग्रेस महात्मा प्रभु. उन्होंने ये गाया है तो आपने ये ट्यून शायद नहीं सुना होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये ट्यून सुना देता हूँ और आप लोग इसका अच्छी तरह से पुष्पांजलि और पुष्प अभिषेक का आनंद भी लीजिए. आप कल एक जन मुझे कंफर्म कीजिएगा जब आपको आवाज सुनाई दे रही है बरोबर तो बताना. सुनाई दे रहे?
एक प्रभु, एक प्रभु.
Govinda Mani Purusha Namaham Bhajani Govinda Mani Purusha Namaham Bhajani. Thank you.